आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर से जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों पर की चर्चा। कहा, जैव उर्वरकों पर जीएसटी में कमी से भी किसानों को मिल रही है मदद। मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 95 नई परियोजनाओं को दी स्वीकृति। मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन की विकास कार्य योजना की प्रगति की भी की समीक्षा। अयोध्या में आज से कलश यात्रा के साथ शुरू हो रहे हैं ध्वजारोहण समारोह के अनुष्ठान। मुख्य समारोह की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाताओं से की विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR में सक्रिय भागीदारी की अपील। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोयम्बटूर से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। इससे प्रदेश के लगभग 2,15,00,000 किसानों सहित देशभर के 9 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्राकृतिक खेती के मामले में वैश्विक केंद्र बन गया है।
भारत नेचुरल फार्मिंग का ग्लोबल हब बनने के रास्ते पर है। हमारी बायोडायवर्सिटी एक नया आकार ले रही है। देश के युवा भी अब एग्रीकल्चर को एक मॉडर्न स्केलेबल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं। इससे देश की रूरल इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलने जा रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को 10,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है। उन्होंने कहा कि जैव उर्वरकों पर GST में कमी से भी किसानों को काफी मदद मिली है।
किसान क्रेडिट कार्ड अकेले KCC से ही इस साल किसानों को 10,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी गई है। 7 साल पहले पशुपालकों और मछली पालकों को KCC की सुविधा मिलने के बाद वो भी इसका जमकर लाभ उठा रहे हैं। बायो फर्टिलाइजर पर GST कम होने से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों की ओर से सम्मान निधि के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इससे राज्य के कृषि विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रदेश के कई जिलों में देखा गया। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। लखनऊ के कृषि निदेशालय में हुए कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने 95 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। वहीं एक अन्य बैठक में मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन के समग्र नगरीय विकास की कार्ययोजना के बारे में भी अधिकारियों से जानकारी ली। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने नहर व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 95 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को समयबद्ध सिंचाई उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 36,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित होगी, जिससे लगभग 9,00,000 किसान और ग्रामीण आबादी को लाभ मिलेगा। इसके अलावा श्री योगी ने मेरठ, कानपुर और मथुरा वृंदावन के समग्र नगरीय विकास की कार्ययोजना की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नगरों का विकास उनके स्थानीय पहचान, इतिहास, संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं का संतुलन बनाते हुए किया जाए। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ऑफलाइन सत्यापन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आधार ऐप लॉन्च करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि आधार ऐप कागज रहित पहचान साझाकरण की सुविधा प्रदान करेगा, जो संपूर्ण या चयनित आधार जानकारी को सत्यापित और साझा करने का विकल्प देगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कल आगरा में आयोजित एकता मार्च में हिस्सा लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह के अनुष्ठान आज से कलश यात्रा के साथ शुरू हो रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार अयोध्या में 23 से 25 नवंबर तक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला होगी। वहां ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने के साथ ही परिसर में बने 7 अन्य मंदिरों में भी पताका फहराई जाएगी। उन्होंने बताया कि 11 मीटर चौड़े और 22 मीटर लंबे ध्वज को फहराने का सफल ट्रायल किया जा चुका है और कार्यक्रम की सभी तकनीकी तैयारियां पूरी हैं। श्री मिश्र ने कहा कि ध्वजारोहण के चलते 25 नवंबर को श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन नहीं मिल पाएंगे, हालांकि 26 नवंबर को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। अयोध्या से तन्मय सोनी के साथ समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेन मिश्र ने बताया कि दर्शन के समय को सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है।
हम ये जानते हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती 26 तारीख को रहेगी, जैसा कि जनवरी में था जब की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। एकाएक भीड़ आएगी, लेकिन कोशिश यह की जा रही है कि उस दिन कम से कम 26 तारीख को 15-16 घंटे या उससे भी अधिक मंदिर खुला रहे, जिससे जो लोग भी बाहर से आएंगे उनको पूरे दर्शन हो सके।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR में सक्रिय भागीदारी करें। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची से संबंधित गणना प्रपत्र को मतदाता ध्यानपूर्वक भरकर BLO को वापस दें।
उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि हमारा घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का चरण शुरू हो चुका है। गणना फॉर्म मिलने पर उस पर अपना हस्ताक्षर करके ये लोगों को वापस कर दें। यदि मतदाता घर पे नहीं है तो परिवार का कोई एक सदस्य सभी परिवार के सदस्यों के प्रगणना फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकता है। हस्ताक्षर करके BLO को देने के साथ ही साथ एक भी अपने पास वो जरूर रखें। ऐसे मतदाता जिनका हस्ताक्षर किया हुआ फॉर्म हमें मिल जाएगा, उन सबका नाम हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो 9 दिसंबर को प्रकाशित होगी उसमें आ जाएगा।
गोरखपुर में फिल्म अभिनेता और सदर सांसद रवि किशन शुक्ल ने भी SIR अभियान से जुड़े गणना प्रपत्र को भरकर अधिकारियों को सौंप दिया। उन्होंने मतदाताओं से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इफ्फी 2025 आज से गोवा में शुरू होगा। इस 9 दिवसीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती परेड के साथ होगी। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
इफ्फी 2025 कई मायनों में खास है। इस वर्ष उद्घाटन समारोह को एक नए रूप में पेश किया जा रहा है और पारंपरिक इंडोर कार्यक्रम की जगह अब स्ट्रीट कार्निवाल ने ले ली है। महोत्सव के दौरान 13 विश्व प्रीमियर और 46 एशियाई प्रीमियर होंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार के साथ 40 लाख रुपए का नकद सम्मान दिया जाएगा। 80 से अधिक देशों के अतिथियों, फिल्म निर्माताओं और 270 से ज्यादा फिल्मों की भागीदारी आयोजन को वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय आयाम प्रदान कर रही है। आदर्श के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा।
मौसम विभाग ने 21 नवंबर तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में कहीं कहीं हल्के कोहरे की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इसके बाद इन संभागों में कहीं कहीं मध्यम कोहरे की भी स्थिति बनेगी। विभाग ने 25 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान भी जताया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयम्बटूर से जारी की PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। पिछले 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों पर की चर्चा। कहा, जैव उर्वरकों पर GST में कमी से भी किसानों को मिल रही है मदद। मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की 95 नई परियोजनाओं को दी स्वीकृति। मेरठ कानपुर और मथुरा वृंदावन की विकास कार्य योजना की प्रगति की भी की समीक्षा। अयोध्या में आज से कलश यात्रा के साथ शुरू हो रहे हैं ध्वजारोहण समारोह के अनुष्ठान। मुख्य समारोह की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाताओं से की विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR में सक्रिय भागीदारी की अपील। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
होती है।